जन्म कर्मावयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तम्भः तत्रायं मदनुग्रहः जन्म कर्मावयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः यदि यस्य न भवेत् स्तम्भः तत्रायं मदनुग्रहः जन्म कर्मावयो रूपा विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः यद् यस्य न भवेत् स्तम्भः तत्रायं मदनुग्रहः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। जन्म कुली परिवार में जन्म लेकर, कर्म अद्भुत कर्मों या पुण्य कर्मों के द्वारा, वया आयु से विशेषतया युवावस्था में जब मनुष्य अनेक कार्य कर सकता है, रूप निजी सौंदर्य से जिससे सभी आकृष्ट होते हैं, विद्या विद्या से ऐश्वर्य ऐश्वर्य से धन धन आदि भी इत्यादि से यदि यदि अस्य स्वामी का न नहीं भवेत है स्तंभ घमंड तत्र ऐसी अवस्था में अयम व्यक्ति मद अनुग्रह समझो कि उसे मेरी कृपा प्राप्त हो। अनुवाद। यदि मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर ना इतराए तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। कृपा करके मेरे पीछे अनुवाद दोहराइए। यदि मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर ना इतराए तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। अनुवाद। तात्पर्य। यदि इन सभी ऐश्वर्य के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं है तो ये समझना चाहिए कि वह ये जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य भगवान की कृपा के फल स्वरूप है, अतः वह अपनी सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि उसका सर्वस्व यहाँ तक कि उसका शरीर भी भगवान का है। यदि कोई पूर्णतः ऐसे कृष्ण भावनामृत में रहता है तो ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। निष्कर्ष ये निकला कि धन से वंचित होना भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता है और व्यर्थ ही ये घमंड नहीं करता कि वह हर वस्तु का स्वामी है तो ये भगवान की विशेष कृपा। हरे कृष्ण। तो आपसे आप भक्तों का फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए भागवतम क्लास में। तो इस श्लोक का जैसे अनुवाद है जिसमें भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? एक सभा में सभी को बोल रहे हैं। उस सभा में कौन कौन है? ब्रह्मा जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज की पत्नी है विंध्यावली और स्वयं बलि महाराज, और अब भगवान उन सबको उद्बोधित कर रहे हैं और ये श्लोक बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मनुष्य उच्चकुल में जन्मा हो, यदि उस पर अद्भुत कर्म हो, अद्भुत उसने कर्म किए हो या कर रहा हो, यदि वो तरुण हो, जवान हो, उसके पास सौंदर्य हो, शिक्षा हो, संपत्ति हो, और इसके पास भी उसको गर्व ना हो, स्तंभस सुस्तंभ ना हो, गर्व ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा है। तो शायद कुछ लोग नहीं आएंगे, ब्रीफ सा बैकग्राउंड अधिकांश आप सब जानते होंगे। ये अध्याय का नाम है बलि महाराज का आत्मसमर्पण। कि आत्म स्कंद में हम देखते हैं कैसे इंद्र और जितने भी देवताओं को वापस अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए वामन देव जो है वो बलि महाराज की सभा में जाते हैं और उनके सामने छल करने की कोशिश करते हैं, छल करते हैं कि छोटे से एक ब्रह्मचारी के वेश में जाते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं, सिर्फ तीन पग जमीन। तो दिखने में तो तीन पग जमीन बहुत छोटी सी दिखाई देगी क्योंकि आदमी बहुत छोटा है, तो उसके पैर भी बहुत छोटे होंगे, कितनी जमीन नाप लेंगे। तो मांगते तो तीन पग जमीन है, लेकिन मांगते तीन पग जमीन है और जब बलि महाराज दे भी देते हैं तो वहां एक पैर से तो नीचे के सारे लोग पूरे कर लेते हैं और दूसरे पैर से ऊंचे के सारे लोग पूरे कर लेते हैं और दो पैर में सारा ब्रह्मांड नाप लिया जाता है। और फिर भगवान कहते हैं कि मैंने तीन पग जमीन मांगी थी लेकिन सिर्फ दो पग जमीन ही प्राप्त हुई है, तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो अब बलि महाराज के पास जितना कुछ भी होता है भगवान ले चुके होते हैं, तो एक तरीके से उनका वचन जो है वो अब खतरे में आ जाता है क्योंकि उन्हें वचन दिया होता है कि मैं आपको तीन पग जमीन जरूर दूंगा, लेकिन उनका जमीन ही नहीं होती कि ब्रह्मांड में जमीन खत्म हो गई तो वहाँ काम वो कैसे दे सकते हैं। लेकिन तो उनको डर लगता है कि क्या मेरा वचन झूठा ना हो जाए, तो बहुत सोचते हैं। लेकिन जब वो ऐसा छल करते हैं कि भान वामन रूप में होते हैं, ड्वार्फ रूप में होते हैं, जब इतना विकार रूप ले लेते हैं तो जितने बलि महाराज तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, वो जानते थे स्वयं भगवान हैं, लेकिन जो बाकी असुर हैं वो बहुत प्रतिक्रिया दिखाते हैं और वो भगवान को मारने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो साफ साफ झूठ है, साफ साफ छल है, क्योंकि भगवान ने कहा कुछ और किया कुछ और, उनको धोखा लगा तो भगवान को मारने के लिए गए। भगवान को कौन मार सकता, तो भगवान को छू भी नहीं सके, भगवान के जितने पार्षद थे उन्होंने उनका वध कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो बलि महाराज को गुरु जो है वो पाश में बंद कर देते हैं और फिर बलि महाराज जो है बन जाते हैं। फिर ये अध्याय शुरू होता है और इस अध्याय में बलि महाराज वासु रूप में, बाकी तो जितने असुर थे क्योंकि उनके अंदर आसुरिक संपत्ति थे, आसुरिक गुण थे, वो तो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन बलि महाराज भगवान की प्रशंसा करते हैं, अपनी स्थिति की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि वासु रूप में किसी को विशेष कृपाई होती है जिसकी जिसके ऊपर आप अनुग्रह करके उसे छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं, ताकि उसका अहंकार खत्म हो जाए, उसका मत खत्म हो जाए, क्यों, अगर हम नहीं छीनेंगे तो वो मदोश रहेगा, नशे में रहेगा, नशे में रहेगा तो आपकी सत्ता को नहीं मानेगा, आप पे विश्वास आस्था नहीं करेगा। तो छीनने पर अगर वो उसका विश्वास आस्था आपके ऊपर बढ़ रहा है, वो निर्भरता आपके ऊपर बढ़ रही है, तो उसकी कृपा है, आपकी कृपा है उसके ऊपर। तो ऐसे करके अपनी स्थिति का गुणगान करते हैं, प्रहलाद महाराज आ जाते हैं, प्रहलाद महाराज भी बलि महाराज भगवान बलि महाराज की स्थिति का गुणगान करते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, आपने इनको ऐश्वर्य दिया, ये देवताओं के ऊपर जीत पाए वो भी आपकी कृपा थी, और आप सब आपको आपने छीन लिया, देवताओं को वापस कर दिया, वो भी आपकी कृपा। फिर ब्रह्मा जी बोलने लगते हैं तो बलि महाराज की पत्नी आ जाती है विंध्यावली, वो कहती है कि मेरे पति के साथ अत्याचार हो रहा है शायद, लेकिन वो भी भक्त थी, वो भी भगवान का गुणगान करती। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान आपने जो हरना था सब हर लिया, तो अब आप इनको इतना और प्रताड़ित मत करें, ये प्रताड़ना अपने आप में कम नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, क्योंकि बलि महाराज बहुत बेइज्जत हो रहे थे, वो असुरों के राजा थे, असुर भी हार गए थे, उनकी पत्नी भी छीन ली गई थी, उनके रिश्तेदार भी जो हैं वो उनको छोड़ चुके थे, उनकी स्थिति बहुत निगण्य हो गई थी, तो वो जो हैं वो बाहर से देखा जाए तो बहुत बेइज्जती वाली बात थी कि उनको भिखारी बना दिया सड़क एक तरीके से। लेकिन बलि महाराज जानते थे भगवान क्यों कर रहे हैं, मेरे हित के लिए कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आपको तो कोई एक दल देकर भी प्रसन्न कर सकता है। इन्होंने पूरा ब्रह्मांड दे दिया, इनसे अब और क्या उम्मीद करें? तो इनको आप छोड़ दीजिए, इनको आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन भगवान का कोई और योजना होती है। तो जब ब्रह्मा जी ऐसे बोलते हैं, फिर भगवान अब बोलना शुरू करते हैं। तो दो श्लोक पहले भगवान बोलते हैं कि वास्तव रूप में जिसके ऊपर भौतिक संपत्ति आती है तो उसका मद बढ़ जाता है, दंभ बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। और जब दंभ बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो दूसरों की इज्जत करना छोड़ देता है, किसी को पूछता नहीं, और मेरी सत्ता को भी ठुकरा देता है। ही डिफाइज माई अथॉरिटी, ऐसा बलि महाराज भगवान कह रहे हैं। जिसके अंदर दंभ आता है उसके दो लक्षण आते हैं, एक वो किसी की इज्जत नहीं करता, ये इज्जत देना नहीं चाहता, और दूसरा कि वो अथॉरिटी को नहीं मानना चाहता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं वास्तव रूप में मनुष्य जन्म तो बहुत जन्मों से मिलने के बाद प्राप्त होता है, तो उसमें ऐसा कार्य करे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भगवान अब उल्टी बात कहते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं कि वास्तव रूप में तो धन, ऐश्वर्य, विद्वत्ता, सौंदर्य, यौवन, ये सब जो है वो मद पैदा करने वाला है, प्राइड पैदा करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी के वो प्राप्त है और उसके अंदर दंभ नहीं है, प्राइड नहीं है, तो क्या समझ लेना चाहिए? अगर वो विनम्र है, ये सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो विनम्र नहीं है, उसके अंदर इस बात का घमंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पर मेरी अहेतु की कृपा है, वो कृपा ऊंची है। ये भी कृपा है कि भगवान किसी का ऐश्वर्य छीन कर अपने ऊपर निर्भरता बढ़ाते हैं, ये भी कृपा है क्योंकि वो भगवान पर निर्भर हो रहा है। लेकिन अगर कोई निर्भर ऑलरेडी है और उसको ये ऐश्वर्य भी है जिससे वो पागल नहीं हो रहा, तो इसके मतलब उसके ऊपर विशेष कृपा है, उसी कृपा उसके ऊपर ज़्यादा है। ऐसे कोई उदाहरण आप बता सकते हैं शास्त्रों में जिसमें ये सारे ऐश्वर्य उनमें पाए जाते हैं, लेकिन जो है वो अम्बरीश महाराज। तो नौवे स्कंद के चौथे अध्याय में वो सुखदेव गोस्वामी जब अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं तो क्या बोलते हैं, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले संपूर्ण विश्व पर शासन किया। तो अम्बरीश महाराज का कितना धन था, उनका राज्य कितना बड़ा था, 7 द्वीपों के ऊपर था, पूरे पृथ्वी के ऊपर था, और पृथ्वी पर अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। उनका ऐश्वर्य कैसा था, असीम था। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है, ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है। तो अम्बरीश महाराज को कैसा लगता था, 7 द्वीपों के मालिक थे, असीम ऐश्वर्य था, लेकिन कैसा लगता था कि ऐश्वर्य सब भौतिक है, स्वप्न तुल्य, ड्रीम लाइक, ये स्वप्न है। स्वप्न में अगर वो राजा बन भी जाए, अगर कोई सपने में देखे, कोई रंग देखे, फकीर देखे कि मैं राजा बन गया अपने सपने, तो उस बात का घमंड करने का क्या फायदा, क्योंकि सपना थोड़ी देर में ही टूट जाएगा, जैसे भौतिक संपत्ति छीन ली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस पर गर्व करने का क्या फायदा, और अंतोगत्वा विनष्ट हो जाएगा, जैसे सपना खत्म हो जाएगा ये भौतिक संपत्ति भी खत्म हो जाएगी। तो ये ज्ञान जिसको प्राप्त है इसका मतलब उसके ऊपर भगवान की कृपा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक डूबता जाता है, और वो जानते थे इससे अगर कोई इस ऐश्वर्य को अपना मान ले तो क्या होगा कि भौतिक प्रकृति में वो डूबता हो जाए। जैसे महाराज अम्बरीश थे, और कोई उदाहरण, श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, कौन था कि जगत गुरुशील प्रभुपाद की, ऐसा और कोई उदाहरण शास्त्रों में, हाँ राजा कुलशेखर, राम जी कितने बड़े भक्त थे, राजा थे लेकिन फिर भी हमेशा राम चिंतन में लगे रहते थे। और कोई उदाहरण, हाँ पुनरी विद्या निधि का उदाहरण आता कि जो है गदाधर पंडित मोहित हो जाते जब उनको देखते हैं, और उनको लगता है ऐसा एक भक्त कैसे हो सकता है कि जो है एक आलीशान बिस्तर पे लेटे हैं और उन्हें मरमल के कपड़े पहने और एक तरफ में तो उनके जो है वो नौकर चाकर उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई मदहोश होकर लेटा। तो गदाधर पंडित सोच सकते हैं ऐसे भक्ति कौन कर सकता है, लेकिन फिर मुकुंद उनको समझाते हैं, क्या बोलते हैं, भागवतम का श्लोक बोलते हैं। तो जब श्लोक का उच्चारण करते हैं तो पुनर्विधि के अंदर विकार आता है तो उनके अंदर भक्ति देख पाते हैं। और कोई उदाहरण? महाराज प्रताप रुद्र है ना, तो उड़ीसा के राजा थे, लेकिन जब जगन्नाथ यात्रा निकलती थी तो क्या सेवा लेते थे? रथ के आगे झाड़ू लगाने का, है ना, महाराज प्रताप रुद्र। और मैं सोच रहा था कि कल एक बहुत बड़ा उत्सव था, क्या उत्सव था? पानी हटी दही चेड़वा उत्सव। तो उसमें मुख्य किरदार कौन थे, किनको दंड मिला था? रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसे थे कि उन किनके बेटे थे? गोवर्धन नंद मजुमदार के, जो कि जमींदार थे, और उनकी मासिक कमाई कितनी थी? 20 लाख सोने की मुद्रा, जिसमें 8 लाख वो लगान देते थे, टैक्स भरते थे, और 12 लाख जो है अपने घर पे रखते थे, ऐसा होता था। तो लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था, जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा महाप्रभु कि मैं आपकी सेवा में संलग्न होना चाहता, तो महाप्रभु ने कहा अभी समय सही नहीं है, अभी आप घर पे रहो और एक भौतिकवादी व्यक्ति के जैसे आप अपना व्यापार करो और जो है संपत्ति कमाओ, अपनी पत्नी का ध्यान रखो, एक भौतिकवादी व्यक्ति के रखो, हाँ लेकिन अपने हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति को अनुकूलित करो। तो पहला आदेश तो उनको ये प्राप्त हुआ, तो आके कमाई करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको जब वो भौतिक जीवन जीते थे तो उनसे सहन नहीं होता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको धन कमाना अच्छा नहीं लगता था, अपनी सुंदर पत्नी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, ऐश्वर्य में रहना अच्छा नहीं लगता था, उनको कांटों को जैसे चुभता था। तो हमेशा वहां से निकलने की कोशिश करते थे, तो भाग जाने की कोशिश करते थे। तो वो सोच रहे थे महाप्रभु ने तो कहा है कि भागना नहीं है, क्या करना है? घर पे रहना है और ऐश्वर्य में ही रहना, लेकिन अंदर अंदर कृष्ण भावना मत का विकसित करना। लेकिन एक दिन जब उनको पता चला पास में पानी हाटी गांव में, सप्तग्राम में रहते थे, उनको पता चला पास में पानी हाटी है, वहां पर नित्यानंद प्रभु आए, तो उनके मन में आया कि नित्यानंद प्रभु का अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से मुझे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए, नित्यानंद प्रभु एक बड़े से विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो नित्यानंद प्रभु के सामने जाएं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको दूर से देखा और उनको एक तरीके से व्यंग रचा उनके सामने कि आपको लगता है कि आप चैतन्य महाप्रभु कृपा बिना गुरु के और भक्तों के प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं, गुरु और भक्तों के आशीर्वाद से ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा इसलिए आपको दंड दिया जाएगा कि आप क्या करो, यहाँ जितने भी वैष्णव हैं उन सबकी आप सेवा करो। तो वो चाहते थे कि भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। फिर उनको दही चढ़वा का दंड मिला, तो उन्हें दही चढ़वा सबको खिलाया। फिर अगले दिन नित्यानंद प्रभु के पास गए और फिर नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि इनके पास तो इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और अप्सरा जैसी पत्नी है, लेकिन फिर भी उसे बंदे नहीं। तो ये उनका असली ऐश्वर्य, फिर भी इनके मन में चैतन्य महाप्रभु के चरणों के प्रति आ सकती है। तो ऐसा कह के जब वो, और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उनके सर पे रखे, और जब सर पे रखे तो उनको नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। बस अब उसी की इंतजार था कि वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब रास्ता खुला, अब जो है मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे घर पे वापस आए तो वो बस अब योजना बनाने लगे कि मैं कैसे भागूंगा और कब भागूंगा। तो जब भी भागते तो उनके पिता ने उनके आगे पीछे 20 जो है वो गार्ड्स सैनिक रख दिए थे कि वो भागेंगे तो आप पकड़ लेना। भागते थे पकड़ लेते थे। तो उनकी पत्नी जो है, उनकी जो माता थी रघुनाथ दास गोस्वामी, परेशान हो गई, तो पति के पास गई, क्या है, कैसे किया जाए, कैसे बांधा जाए, आप क्या करें, इनको रस्सी से बांध दीजिए, ताकि जो अगर रस्सी से बांध देंगे, रस्सी से बंधे रहेंगे तो आप ये छूट नहीं पाएंगे। तो उनके पिता क्या कहते हैं, चैतन्य चरितमृत की अंत्य लीला में ही 6 अध्याय में आता है, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ऐसा भांडी ते नारी लेखा यंद्र माना। वो कहते थे जिसको इंद्र के समान ऐश्वर्य नहीं बांध सकता, अप्सरा के समान उसको स्त्री नहीं बांध सकती, उसको रस्सी क्या बांधेगी, रस्सी क्या कर सकती है उसको। जिसको इंद्र के समान ऐश्वर्य नहीं बांध सकता, जिसको पूरी दुनिया ने बांधा हुआ है, ऐश्वर्य ने सभी को बांधा हुआ है, स्त्री ने सभी को बांधा हुआ है, जिसको वो नहीं बांध सकती तो रस्सी क्या बांध दे। फिर वो कहते हैं दादी रबंदी ने तंद राखी बे के माते जन्मदाता पिता नारी प्रारब्ध है खंडायते, कि इसके तो प्रारब्ध है कि इसको तो भागना है, तो इसको ना पिता रो सकता ना माता रो सकती, वो दो नहीं रो सकता, इसका प्रारब्ध वो बंद। और फिर वही चीज कहते हैं जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, चैतन्य चंदेरा कृपा हने याची हारे चैतन्य चंदेरा बातुल के राखी ते पारे। क्या कहते हैं कि लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु हैज फुली बिस्टोड हिज मर्सी ऑन हिम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर पूर्ण कृपा कर दी। हु कैन कीप होम सच अ मैड मैन ऑफ चैतन्य चंद्र, ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु के पागल आदमी को घर पे कौन रख सकता है, तो तुम उम्मीद भूल जाओ, ये समय की बात, घर पे नहीं रहेंगे, घर से भाग जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा होता है मौका ढूंढ के रघुनाथ स्वामी भाग जाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, जगन्नाथपुरी। तो अगर आप घर से भागते हैं तो प्रमाणिक, लेकिन पूछ के भागे, वो भी नित्यानंद का आशीर्वाद देके भागे थे, वैष्णव का आशीर्वाद देके भागे थे, फिर उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई थी। तो खैर जोक से पार, ऐसा उसको लिटिली मत समझिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वासु रूप में जिसके ऊपर चैतन्य की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, उसके लिए भौतिक ऐश्वर्य, स्त्री, धन, ये सब चीजें काम नहीं करती। जैसे कुंती महारानी कहती है, क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्री भी रेदा मान मदा पुमान नाय हृत्य भी धातुम वही तुम अकिंचन गोचरा। वो कहती है चार चीजें जो हैं वो पागल करने वाली, मत पैदा कर, इंटॉक्सिकेट करने वाली। एक चीज जो नशा करती है वह शराब, कुंती महारानी कहती है शराब के अलावा भी चार चीजें भी नशा पैदा करती है। क्या कहती हैं, जन्म ऐश्वर्या श्रुता श्री भी, जन्म मतलब एक अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य ऑपुलेंस, जन्म श्रुता श्रुता श्री भीर, श्रुता विद्वत्ता, श्री मतलब सुंदरता, सौंदर्य, अगर कोई बहुत सुंदर हो, उसकी बहुत विद्वान हो, अगर उसका बहुत धन हो, अच्छे कुल में उसका जन्म हो, तो एदा मान मदापमान, तो वो मद पैदा करने वाले, वो इंटॉक्सिकेट करने वाले। तो ना अवहर्त्य भी धातु वही, ऐसा व्यक्ति जो है वो आपको आपकी शरण नहीं ले सकता था। क्यों, आप अकिंचन गोचरम, कोई अकिंचन व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास ये चीज़ें होती हैं तो जो है वो उसमें इतना पागल हो जाता है कि उसको जो है भगवान का आश्रय प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि निर्भरता खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि सब मेरे पास है तो सही, तो मुझे किसी का आश्रय लेने की क्या जरूरत है, लोगों को मुझे मेरे पे आश्रय लेना चाहिए, मैं किसी के आश्रय क्यों लूँ, उनको ऐसा लगता है, तो इस तरीके से उनको महसूस होता है। तो इसलिए वो एक नशा पैदा करने वाले, वो कहती है कुंती महारानी ऐसे प्रार्थना करते हैं। और उसी तरीके से वृतासुर भी जो है भागवतम के 36 स्कंद में इंद्र को यही चीज बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं, पुंसा केलय एकांत धीयम सुकानम यो संपादम देवी भौम रसायम यद नारति द्वेष उद्वेग आधीर मद कलीर व्यसनम संप्रयास। ये वृतासुर इंद्र को क्या कहते हैं, इंद्र को कहते हैं कि हे इंद्र, जिसने भगवान की एकांत भक्ति कर ली है, एकमात्र शरण स्वीकार कर लिया है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को, जिसने भगवान का आश्रय प्राप्त कर लिया है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को जो है वो तीनों लोकों में से कोई ऐश्वर्य नहीं देते, कोई संपत्ति नहीं देते, ना ऊंचे लोगों की संपत्ति देते हैं, ना इस लोक की संपत्ति देते हैं, ना नीचे लोगों की संपत्ति देते हैं। भागवतम के 6 स्कंद के 11वें अध्याय का 22वां श्लोक में वृतासुर कहते हैं कि भगवान जो भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान उनको संपत्ति विहीन करते हैं, संपत्ति नहीं देते। क्यों, क्योंकि उनको जैसी भौतिक संपत्ति देंगे तो क्या उसका परिणाम होगा, तो वो पांच कारण बता रहे हैं, और पांच कारण मुझे इस भागवतम के इस प्रसंग से मिला। तो भौतिक ऐश्वर्य किसी को प्राप्त होता है तो 10 चीजें उसको मिलती हैं जो उसके भक्ति में बाधा पैदा करती है, तो 10 डिसएडवांटेजेस ऑफ मटेरियल ऑपुलेंस, और उसके ऊपर हम चर्चा करें। सबसे पहले समझना चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि छुरी अच्छी होती है बुरी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? छुरी जो है वो अच्छी होती है या बुरी होती है, क्या बोलेंगे? उसके इस्तेमाल के ऊपर है ना। छुरी अपने आप में अच्छी है, अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं, उसका इस्तेमाल अच्छा है बुरा। उसी तरीके से भौतिक संपत्ति भी अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं, उसका इस्तेमाल अच्छा और बुरा। जैसे भवन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इसका भौतिक संपत्ति है लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगाता है, उससे उसे कृष्ण पर निर्भरता पर बाधा नहीं पड़ती, तो वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, तो वो भगवान की कृपा है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा नहीं होता, अधिकांशतः भौतिक संपत्ति क्या है, ये जो है हमारा हमें भगवान की भक्ति में दूर ले जाने वाला। और ये चीज़ भृतासुर उनको कह रहे हैं और कुंती महारानी भी कह रहे हैं। और वो क्या चीज़ें कहते हैं कि वो 10 चीज़ें क्या हैं जो भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ लेके आता है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है? तो क्या है? एक वो कहते हैं कि ना रति यद ना रति, भगवान नहीं देते भौतिक संपत्ति। क्यों? कि भौतिक संपत्ति, जैसे किसी को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है कैसे भी, अच्छा रूप बहुत सुंदर बन जाए, अगर वो उसकी सब प्रशंसा करे और उसके पास बहुत धन आ जाए, बहुत अमीर बन जाए, या फिर उसकी विद्वत्ता बहुत बढ़ जाए, तो उसके अंदर पहला लक्षण क्या आ जाएगा? उसके अंदर द्वेष, उसमें द्वेष पैदा हो जाए, विल बिकम एनवियस। एक भक्त बता रहे थे कि वो एक दिन IIT बॉम्बे में प्रीचिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पर राधानाथ मार्च का प्रवचन था, तो वो सबको इनवाइट करने के लिए गए कि आप आइए, एक बहुत बड़े स्वामी हैं राधानाथ स्वामी, उनका प्रवचन आके सुनिए। तो सब लोगों का आमंत्रित कर रहे थे, तो जैसे ही आमंत्रित कर रहे थे, दो भक्त थे, एक राधा गिरधारी प्रभु थे और एक भक्त और थे। तो जब वहाँ गए लोगों का आमंत्रित करने के लिए, तो क्या हुआ कि उन्हें 3 लड़कों को देखा, तो देख के लग रहा था कि लड़के जो हैं बहुत जीनियस हैं, देख के लग रहा था कि ये जो है कोई टॉपर कैटेगरी एलीट में से होंगे, उनके हाव भाव से, चाल चलन से। तो सोचा यार इनको ज़रूर बुलाना चाहिए क्लास, ऐसे लोग जुड़ेंगे भक्ति में तो प्रचार और होगा और अभी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने कहा चलो इनको पकड़ते हैं। तो ये दोनों भक्त जो हैं उन तीनों लोगों के पास गए उनको इन्वाइट करने के लिए कि आइए आज हमारा प्रोग्राम है आपके कॉलेज में IIT बॉम्बे में, तो आप उसको अटेंड कीजिए। तो जैसे उनके पास गए उनको बोला कि भाई साहब हरे कृष्णा सुनिए, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात ही बोली तो उसमें से एक लड़के ने बोला, वो लड़का अपनी विद्वत्ता पे, अपनी लर्निंग पर, अपनी एजुकेशन पर इतना घमंडी था कि उसने बोला कि आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? तो उन्हें सोचा आप ही बता दीजिए मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो मैं AIR रैंक AIR 1 हूँ, AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक, मैं AIR 1 हूँ, जो मेरे साथ खड़ा ये AIR 2 है और जो उसके साथ खड़ा वो AIR 5 है, 3 नहीं है 5 है। तो मैं AIR 1 हूँ, ये AIR 2 है और AIR 5, टोटल मिलाकर भी 10 नहीं होता, तो टॉप 10 के अंदर अंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने स्वामी को मुश्किल में डालना चाहते हैं तो हमें बुलाइए, तो शायद स्वामी जो है वो कठिनाई में आ जाएंगे। तो उनको यार हमने गुरु को, हमारे गुरु को कह रहे हैं ऐसा, उनको तो बड़ा गुस्सा है, कह रहा फिर तो आपको आना ही पड़ेगा, फिर तो आपके लिए हम पहले आगे वाली सीट रखेंगे कि आप सबसे आगे बैठ के सुने। फिर मन ही मन सोचते देखते हैं कि कौन मुश्किल में आएगा, ये चुनौती हो गई, चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो। तो ये गर्व में पागल थे, ये भक्तों में विश्वास था कि भान और भान के भक्तों को कौन जो है वो हरा सकता। ठीक है आप आइए हम आपके इंतज़ार करेंगे। तो प्रोग्राम का समय आया, पूरा हॉल भर गया, लेकिन कौन लोग नहीं आए? ये 3 लोग नहीं आए। तीन लोगों को लगा कि शायद आएंगे नहीं, गर्व में इतने पागल हैं, इनको लगता है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, तो ये लोग आने वाले नहीं। एनी हाउ सीटें तो थी। तो क्या हुआ, जैसे महाराज आए और प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था, तो उन भक्तों ने क्या देखा कि दूर से कौन आ रहे हैं? ये 3 लोग आ रहे हैं। वो बहुत खुशी होते, स्वागत किया, आइए आइए आपका इंतजार हो रहा था, AIR 1 AIR 2 AIR 5 आपके लिए 3 रखी थी सीटें, आइए आइए आपका स्वागत, आइए बैठिए। तो महाराज ने क्लास ली, महाराज ने कथा ली और महाराज ने इतने दिव्य रूप से, इतने अद्भुत तरीके से सबको बताया कि सब जो है बिल्कुल मोहित हो गए, सुभान महाराज से सुन के सबके हृदय में भक्ति भावना जाग गई, सब बहुत कोमल हृदय के हो गए, निर्मल हृदय के हो गए। तो महाराज ने कहा एनी क्वेश्चंस, तो भक्त बोल रहे थे कि भौतिक संसार में कहना भी बहुत, मतलब इसे के अंदर बहुत विश्वास और करेज चाहिए, कोई इस भरी सभा में नए लोगों को पूरा ऑडिटोरियम भरा और ये कहे कि एनी क्वेश्चंस, रेडी फॉर एनी क्वेश्चंस। तो महाराज ने कहा उसी कॉन्फिडेंस से एनी क्वेश्चंस, तो इन दोनों भक्तों ने किनकी तरफ देखा? 1, 2 और 5 के सामने देखा। लेकिन वो भगवान महाराज के संग से इतने प्रभावित हो गए थे, बिल्कुल डम्ब स्ट्रक जिसको कहते हैं, स्पेल बाउंड, वो कुछ बोल ही ना पाए, जैसे होता ना मुंह खुला खुला रह जाता है, ऐसा हो गया और कुछ बोल ही ना पाए। तो वो जान पूछ के बोले, पूछिए प्रश्न पूछिए, आपके लिए इंतजार हो रहा था, पूछिए महाराज ये प्रश्न पूछना शायद चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा सॉरी नो क्वेश्चंस, वी आर सैटिस्फाइड, वी आर सैटिस्फाइड। तो सोचे थे किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, तो उनका गर्व जो है चकनाचूर हुआ एक तरीके से, समझे कि हमसे हमारे पास विद्वत्ता नहीं है, भक्तों का ऐश्वर्य एक अलग स्तर पर, जब भगवान ऐश्वर्य देते हैं तो उसके सामने किसका ऐश्वर्य टकेगा। तो उसी तरीके से, तो लेकिन उसी तरीके से वित्तासुर कहते हैं कि जो पहली चीज पैदा होती है भौतिक ऐश्वर्य से वो क्या है, द्वेष, द्वेष पैदा होता है। जैसे हम शास्त्रों में कौन सा उदाहरण देते हैं द्वेष के लिए, इंद्र का द्वेष देखते हैं। इंद्र हालांकि देवता है क्योंकि भौतिक आसक्ति भौतिक संपत्ति से वो आसक्त हैं, तो द्वेष पैदा हो जाता है। जब हम 34 कंध में पढ़ते हैं, जब महाराज पृथु जो है वो भान के शक्ति हुए अवतार थे, स्वयं भगवान थे, लेकिन जब वो यज्ञ करने जा रहे थे तो इंद्र का एक नाम है श्रत क्रतु, कि उनको इंद्र की पदवी क्यों मिली है, क्योंकि उन्हें कितने यज्ञ किए हैं, 100 यज्ञ किए हैं। तो माँ जब पृथु ने ठाना कि मैं भी 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, तो किसके हृदय में द्वेष आ गया, इंद्र के। तो इंद्र क्या करने लगे, जैसे यज्ञ हो रहा था तो 99 यज्ञ हो चुका था, तो उन्होंने क्या किया, इंद्र जो है वो उसने घोड़े को चुरा लिया। तो वहां गीरा ऋषि थे, उन्होंने देख लिया इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया, तो उन्होंने महाराज पितु के बेटे को बोला जाओ उनको पकड़ो, इंद्र ने चुरा लिया। तो वो भागे, जैसे वो भागे और इंद्र को पकड़ने लगे थे, इंद्र ने क्या किया, अपनी वेशभूषा बदल ली, एक सन्यासी वेशभूषा में आ गए। तो महाराज पितु के बेटे ने देखा तो सन्यासी हैं, इनको मैं कैसे पकड़ सकता हूं, तो छोड़ दिया। अंगिरा ऋषि ने तुरंत देख लिया कि महाराज पितु के बेटे ने छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सन्यासी नहीं है, ढोंगी सन्यासी है इंद्र, तो पकड़ो। तो जैसे पकड़ने के लिए इंद्र गायब हो गए और घोड़ा प्राप्त करके वो वापस आ गए। फिर यज्ञ होने लगा, फिर आहुति देसी दे रहे थे, तो इंद्र जैसे ही वो घोड़े को वापस बुला रहे थे, इंद्र ने क्या किया, पूरे आसमान में सब कालापन छा गया और इंद्र फिर से घोड़ा छुड़ा के जाने लगा। फिर अंगिरेश्वर ने कहा देखो इंद्र भाग रहा है पकड़ो, फिर महापितु के बेटे गए, फिर पकड़ने के लिए गए, फिर इंद्र ने अपनी वेशभूषा बदल लिया, एक नए सन्यासी के रूप में आ गए, ऐसे सन्यासी जिसके दंड के ऊपर एक खोपड़ी थी, ऐसा लिखा है, और पूरे शरीर में राख थी, पूरे शरीर में राख उन्होंने लगाई हुई थी और दंड था और खोपड़ी थी, थे वो सन्यासी। तो उन्होंने कहा रहे इनको कैसे पकड़ूंगा, बस कर दिया। तो फिर वो वापस आया, फिर अंगिरेश ने देखा नहीं नहीं दोबारा पकड़ो, ये इंद्र है एक सन्यासी नहीं, फिर पकड़ने के लिए इंद्र गायब हो गए, फिर घोड़ा पकड़ के आए, फिर से यज्ञ हुआ, फिर जब दे रहे थे तो इंद्र द्वारा तीसरी बार जब आए तो महाराज पृथु ने ठान लिया कि अब मैं इंद्र का वध करूं। तो सभी जितने ब्राह्मण थे रोका, नहीं आप वध नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में वध सिर्फ पशुओं का हो सकता है, देवताओं का वध नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास एक योजना है, हम सभी देवताओं को यहाँ पर बुलाएंगे अपना अपना शेर लेने के लिए, तो इंद्र को भी बुलाएंगे, और इंद्र जैसे ही अपना भाग लेने के लिए आएगा मंत्र फूकेंगे और इंद्र जो है वो इस अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगा और भस्म हो जाएगा, तो आप चिंता मत करो। तो वो आहुति देने लगे, इंद्र जो है वो अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आ रहा था, लेकिन फिर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने उनको रोका। तो महाराज पृथु समझ गए कि महाराज पृथु के हृदय में वो यज्ञ जो है वो इंद्र की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे थे, उनमें हृदय द्वेष नहीं था। तो जैसे उनको रोका ब्रह्मा जी ने, तुरंत उन्होंने इंद्र को माफ कर दिया, इंद्र के हृदय में द्वेष। तो भौतिक संपत्ति आसक्ति से कारण पहला लक्षण क्या पैदा होता है, द्वेष। दूसरा उद्वेग, एंग्जाइटी,
क्योंकि बहुत ही संपत्ति किसी के पास होती है तो नेचुरली वो एंग्शियस बन जाता है. क्यों? क्योंकि एक तो उसके शत्रु बहुत बन जाते हैं. अगर आपके पास धन आ जाए, आपने बड़ा सुंदर मकान ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, तो सब ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, सब दुश्मन बन जाते हैं, रिश्तेदार भी दुश्मन बन जाते हैं. हम एक बार नोएडा में गए थे, हमारे डोनर तो बता रहे थे कि मेरे सगे भाई ने, क्योंकि जैसे जैसे मैं तरक्की कर रहा था, मेरा भाई तरक्की नहीं कर पा रहा, तो एक दिन मेरे भाई को फैक्ट्री में बुलाया खुशी व्यक्त करने की. मैं दिखाना चाहता था मैंने कितनी बड़ी फैक्ट्री खरीद ली और मैं कैसे तरक्की कर रहा हूँ. लेकिन जो भाई था उसके हृदय में बहुत ईर्ष्या थी. तो भाई उसकी भाभी ने क्या किया, किसी मुसलमान पीर से जो है वो कुछ जो है वो विभूति ले आया, ऐसा कुछ जादू टोने. तो जैसे भाई दिखाने लगा कि देखो ये मशीन जो है हमारा कपड़ा बनाती है, ये सबसे बड़ी मशीन है, ये मशीन जो है उसको डाई करती है, ये मशीन जो उसको प्रिंट करती है, जैसे अपनी मशीन दिखाने लगा, वो उसका भाई क्या करने लगा, हर एक मशीन पर वो विभूति या राग वो डालने लगा. तो भी बड़ा खुश हो रहा था, देखो बताओ बताओ कौन सी अगली मशीन, सबसे बड़ी मशीन कौन सी, सबसे ज़्यादा काम किस पे होता है, कारीगर सबसे ज़्यादा किस में लगते हैं, ऐसे से पूछने के बाद हर जगह पर क्या डालने लगा, वो राग डालने. तो अगले दिन, ये संडे का दिन था, कर्मचारी भी नहीं थे, तो अगले दिन कर्मचारी आए तो अलग अलग लोगों ने देखा, कर्मचारियों ने देखा कि हमारी मशीन पे कुछ अलग सा राग सा कुछ पड़ा और कुछ ताबीज सी पड़ी. तो अलग अलग कर्मचारी अलग अलग समय पर वो ताबीज और राग सी लेके आए. उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ कल कौन आया था, तो ना कल तो कोई नहीं आया था, मैं ही आया था, मेरे साथ मेरे भाई आए थे, भाभी आई थी. तो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं कि हर मशीन पर हमारी जो है ये ताबीज और राख रखी, तुमको समझ नहीं आया. उन्होंने जब ताबीज देखी तो कुछ उर्दू में लिखा था. तो फिर वो एक और पीर के पास गए और पीर से पूछा कि क्या लिखा ताबीज के ऊपर और ये क्या है राख. तो उन्होंने कहा ये तो काला जादू, अगर आप सही समय पे नहीं पकड़ते तो ये आपको तबाह कर देते. तुरंत उन्होंने पूरी फैक्ट्री को साफ कराया, ना जाने उन्हें कहाँ कहाँ रखा होगा, पूरी फैक्ट्री को सफाई कराया. फिर हमें बोला उन्होंने, प्रभु जी राग तो वो रख गए, कम से कम कीर्तन तो आप कर दीजिए. तो फिर हमने वहाँ पर नरसिंह आरती की, नरसिंह भगवान को स्थापित किया, कीर्तन किया और फिर उनको वहाँ पर वो फिर संतुष्ट हुए. फिर वो हमें हर हर जगह वहाँ लेके गए. जहाँ उनको खतरा लग रहा था हम भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नरसिंह भगवान की रक्षा करेंगे. तो ऐसे हम हर मशीन हम उस हर स्थान पर गए. तो फाइनली उन्होंने अपने चेक कुर्सी पे बिठाया कि प्रभु जी यहाँ बैठ के आप कीर्तन कीजिए, क्योंकि ना पहले यहाँ पर ही कुछ भूत जैसी चीज़ें पाई गई थी, तब यहाँ बैठ के कीर्तन की. फिर हमने वहाँ कीर्तन किया और फिर नरसिंह भगवान को स्थापित किया और फिर उनको बोला आप हर रोज नरसिंह आरती कीजिए, नरसिंह कवच स्तोत्र गाइए और फिर सब ठीक हो जाए. तो तब से कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो वह अब संतुष्ट हैं कि मशीन बढ़िया चल रही. उन्हें फिर हमें अच्छी डोनेशन भी दी. हम भी बड़े खुश हुए, फिर वापस आ गए. तो इस तरीके से तो उद्वेग परेशान हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है. तीसरा मेंटल एजिटेशन, अधीर. तो धीर जो है वो उत्तेजित हो जाता. जैसे कहानी आती है स्टोरी ऑफ 99, सुना होगा आपने स्टोरी ऑफ 99 कॉइंस. जैसे एक राजा था, तो राजा के पास इतना बड़ा राज्य था, इतनी संपत्ति थी, लेकिन हमेशा परेशान रहता था. लेकिन जब भी देखता था उसके राज्य में एक उसका नौकर वो गुनगुनाते हुए आ रहा होता था, वो मज़े में आ रहा होता था, हमेशा खुश रहता था, गुनगुनाते हुए चला जाता, काम करता, मज़े में रहता, आनंद में रहता. तो राजा ने मंत्री से पूछा यार ये क्या बात है, राजा मैं हूँ, नौकर वो है, खुश मुझे रहना चाहिए, खुश हो रहता है, ये पहली समझ में नहीं आई. तो उन्होंने कहा बहुत सरल पहली, इसका मतलब वो 99 क्लब में नहीं आए. तो राजा ने कहा 99 क्लब क्या होता है, कहता अभी बताता हूँ. तो कहता है 99 क्लब का क्या मतलब होता है, आप एक काम करो, इसके घर पे सैनिकों के द्वारा छुप कर 99 गोल्ड कॉइन रखवा दो. राजा ने रखवा दी. ये व्यक्ति गुनगुनाते हुए जैसे हर रोज करता था वापस घर पहुँचा. घर पहुँचने के बाद क्या हुआ, इसे देखा एक थैला पड़ा है घर के बाहर. तो थैला अंदर ले आया और गिनने लगा. जैसे गिनने लगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 99. फिर दोबारा गिना, फिर बेटे को बोला
बिटिया को बोला, पत्नी को बोला,
जितनी बार सबने गिना कितना नंबर निकला,
99 निकला।
तो समझ नहीं यार ये क्या बात, 100 बार सोने का मुद्रक आ गया। उस सब घर छान मारा, सबको बोला निकालो यहाँ जरूर 100 जो सोने का मुद्रा इसी कहीं कहीं छुपा होगा या गिर गया होगा। पूरा घर छान मारा, मिला ना। अब उसको लगा यार किसने शायद चोरी कर लिया, थैले में पड़ा हुआ था, इससे पहले मैं आता कोई एक निकाल के चले गए। उसको लगा 99 को क्या करना है, 100 करना है। कहता मैं दिन रात एक कर दूंगा, 99 को मैं 100 जरूर करूँगा। फिर अगले दिन वो गया, सुबह सुबह 10 बजे आराम से जाता था, सब कुछ करके जाता था, मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाता था। इस बार गया तो जो है वो सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गया और फाइलें खोलनी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल कुंठित परेशान, बिल्कुल इंटेंस अब्जॉर्ब कि जो है एक सोने की मुद्रा जरूर कमानी है इस महीने। सुबह से लेकर शाम को 6 बजे चल जाता था, 9-10 बजे आता रहा, 6 बजे चल जाता था, सुबह 6 बजे आया, शाम को 9-10 बज गए, उसको घर से फ़ोन आने लगे, कहाँ आप आए नहीं अभी तक। वापस गया परेशान, ऐसे 2-4 दिन हो गए। जब राजा ने उसकी स्थिति देखी, राजा ने कहा इसको क्या हो गया, आराम से आता था, आराम से जाता था, मज़े में रहता था, लेकिन अब सुबह जल्दी आ जाता है, शाम को लेट जाता है, तब भी परेशान रहता है, तब भी इसका काम पूरा नहीं होता, हमेशा कुंठित रहता है, क्या परेशानी है इसको। तो उसे मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री हुआ क्या, ये तो आदमी बिल्कुल कुंठित हो गया, परेशान हो गया। मंत्री ने कहा हाँ राजा साहब यही बात, अब वो 99 क्लब में आ गया, नाउ ही इज पार्ट ऑफ 99 क्लब, इसलिए वह संतुष्ट। तो राजा इसलिए आप 99 क्लब में जब तक रहेंगे सर असंतुष्ट रहेंगे, तो आप क्लब से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी तरीके से ये भौतिक संपत्ति क्या करती है, एजिटेशन पैदा करती है, कभी सेटिस्फैक्शन कंटेंट नहीं देती, हमेशा 99 फिगर रहती है, 100 नहीं हो पाती। फिर तीसरी चीज, पहला क्या था, द्वेष, दूसरा उद्विग्न, तीसरा अधी मेंटलिज्म, चौथा मद प्राइड, प्राइड पैदा करता, जैसे नल कुबेर मनी ग्रीफ की कथा हम जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं बोलूंगा, समय भी हो रहा। फिर पांचवा बिलिजरेंस कली, जिसके अंदर भौतिक संपत्ति आ जाती है, वो लड़ने के लिए बहुत आतुर हो जाता है। जैसे भागवतम में श्रृंगी कथा सुनते हैं, जैसे ही शैमित ऋषि के ऊपर परीक्षित महाराज ने, एक छोटी सी गलती थी परीक्षित महाराज, लेकिन जो शैमित ऋषि का बेटा था श्रृंगी, मद में इतना पागल था, उसको लगता मैं इतने बड़े ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति, भ्रम तेज है मेरे पास, मेरे पिता के उसको उसने छुआ कैसे राजा ने। तो जब वैसे उसको पता चला उसका बेटा जो था शैमिक ऋषि का श्रृंगी पागल हो गया, ब्लिजरेंस कली, और वो क्या कहने लगा, अरे ऐसे शब्द बोलने लगा, मैं आपको सुनाता हूं, शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध काबों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप धाड़ते। अब वो राजा को क्या कहने लगा, जिनका जो दास के समान है, कुत्तों के समान है, वो अपने स्वामी ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा कार्य कर रहा है। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुए हैं और उन्होंने और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। कैसे क्या कह रहे हैं, राजाओं की क्या सेवा है कि द्वार के रक्षक में कुत्तों के समान है और उनको द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं, ऐसे शब्द बोलकर उसने अल्टीमेटली परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। तो मद दिखाता है, क्यों, कि उसको लगा कि मैं ब्राह्मण का बेटा, तो मद अहंकार, तो ये पांचवा। फिर छठा था स्तब्ध, जब भौतिक ऐश्वर्य आ जाता है तो वो स्तब्ध हो जाता है, डल विट, पागल हो जाता है, उसको सही और गलत का पता ही नहीं चलता। जैसे हनुमान जी थे, जब हनुमान जी बच्चे थे, तो कथा लंबी है लेकिन संक्षिप्त में ऐसा है, जब हनुमान जी छोटे से बच्चे थे तो उनके इंद्र शक्ति थे, उन्होंने एक बार सूरज को देखा तो उसको लगा कि लाल रंग का फल है, तो छलांग मारी पृथ्वी से, छलांग मारी, कैकश नाम के वो पर्वत आज भी हैं जहाँ पर वो रहते थे, तो कौन सी जगह थी जहाँ हनुमान जी अंजना माता रहती थी, किष्किंधा, किष्किंधा पर्वतों में, तो वहाँ से छलांग मारी तो जो है वो सूरज को निगल लिया, तो पूरा ब्रह्मांड में अंधेरा अंधेरा हो गया। तो इंद्र को लगा ये पावर कट कैसे हो गए, तो उनको लगा कि ये एक हनुमान एक बंदर ने जो है वो सूरज को निगल लिया। तो इंद्र जो है वो गए सूरज को छुड़ाने के लिए, राहु को सूरज को ग्रहण लगाना था, तो हनुमान को लगा कि ये भी एक दूसरे किस्म का फल है, तो राहु को भी निगल लिया उन्होंने। तो इंद्र जब गए तो उन्हें देखा ये कैसा बंदर है, राहु और सूरज दोनों को निगल लिया। तो उन्होंने वज्र अपना फेंका, तो वज्र जब लगा हनुमान के ऊपर, तो छोटे से बच्चे के ऊपर, तो नीचे गिरे, तो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो पहले तो पावर कट हुआ था, इस बार क्या हुआ कि पूरा एयर सर्कुलेशन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पिता कौन है? वायुदेव। जब वायुदेव को लगा मैंने बेटे को मार दिया, तो उनको बड़ा खराब लगा, तो उन्हें पूरा सर्कुलेशन सिस्टम चोक कर दिया। तो सब देवताओं को लगा ये क्या हो गया, तो इनको छुड़ाना पड़ेगा। तो सब गए बंदर उस बंदर को वापस जीवित करने के लिए। फिर सब ने अपना आशीर्वाद दिया, तो हनुमान जी के ऊपर और भी शक्ति आ गई। जैसी शक्ति ऐसी आ गई, अब वो क्या करने लगे, सब ऋषियों को परेशान करने लगे। और फिर अल्टीमेटली त्रिन बंधु नाम के ऋषि थे जिन्होंने उनको ये श्राप दिया कि आप अपनी सब शक्ति भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप स्तब्ध हो गए, डल विटेड। तो जब कोई आपको याद दिलाएगा, जब जरूरत पड़ेगी, तब आपको शक्तियाँ जो है दोबारा याद आए। ये था छठा। सातवां, अवमान्यते, कि जिसके अंदर भौतिक ऐश्वर्य आता है वो दूसरों की इज्जत करना छोड़ देता है, जैसे भगवान इस श्लोक में कहते हैं, और अथॉरिटी को नहीं मानता। आठवां, जैसे प्रेमानंदपुर ने श्लोक लिया था इसके ऊपर, कि जिसके भौतिक संपत्ति आती है तो वो गोल ऑफ लाइफ भूल जाता है, जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। और नौवां, कि ही इज पुट इन टू डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, उसके अंदर अविद्या आती है, तो सही और गलत की पहचान भूल जाता है, अज्ञान बन जाता है। और दसवां, कि वो ये भूल जाता है कि जीवन अनित्य है, पश्यन अपि न पश्यति, देह अपत्य कलत्र देशु आत्मसैन्यु असत्सु अपि तेषां प्रमत्न निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वो जानता है कि जो है ये प्रमत्ता नाम निधनम कि डिस्ट्रक्शन आ रही है, मृत्यु आ रही है, पश्चन अव पश्यति, देखते हुए भी वो नहीं देखता कि जीवन जो है नित्य। तो इस तरीके से वो, क्योंकि वो इन सब बुराइयों के कारण जो है भगवान किसी को भौतिक ऐश्वर्य नहीं देते, अपने भक्तों को नहीं देते, ताकि वो उसमें भ्रमित ना होने। लेकिन अगर कोई योग्य भक्त है जो भौतिक ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा सकता है, तो उसको प्रचुर मात्रा में देते हैं, क्योंकि जानते हैं वो संपत्ति का सही इस्तेमाल करेगा। और इसके उज्ज्वलंत उदाहरण कौन है? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद को भगवान ने प्रचुर संपत्ति दी, जिसको उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, जिसको आसम हम इस्तेमाल करके हम कृष्ण को जान पा रहे। तो इसी साथ मैं विराम दूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा मांगूंगा कि मैं 5 मिनट ऊपर चला गया और आपका 5 मिनट समय और लिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद खे, शिला प्रभुपाद खे, श्री आधार अधिकारमान भगवान खे, श्री श्री कृष्ण बलराम खे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी खे, आप सब भक्त वृंद खे, निताय गौर खे, मनंदे हरे कृष्ण।